मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे एक महाकंजूस व्यक्ति की महाकथा सुनाने जा रहा हूं, महाकंजूस। और इसको समझने के लिए, इस कथा को महसूस करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1940 से 50 के दौर में आप पहुंच जाइए। सन 1940 से 1950 के बीच में एक व्यक्ति है, मैं जो कथा कह रहा हूं वह इसी के बीच की कथा है। और दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, दिसंबर 1949 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो मानस था उनका, जो सोचने समझने का तरीका था, जो जीवन की शैली थी, आपको थोड़ा सा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति है महाकंजूस, लेकिन गरीब नहीं। वो उस समय आप कह लीजिए कि हिंदुस्तान के नहीं बल्कि इंग्लैंड के भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कमाई तो लाखों में थी, लेकिन जब आप कंजूसी की कथाएं सुनेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा और लगेगा कि जानबूझकर ने ये कहानियां गढ़ दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो गढ़ी गई कहानियां नहीं है, देखी गई कहानियां हैं, जिनकी चर्चा बाकायदे एक पुस्तक में डॉक्टर कांति कुमार जैन जी ने की है। डॉक्टर कांति कुमार जैन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है। वो सागर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और उनके जो छोटे भाई थे वो अंबिकापुर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, जिनसे मुझे पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने अगर साहित्य के हिस्से के अंतर्गत इसे लिखा है तो हमें इसे सच मानना चाहिए और अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, जो उन्होंने देखा है, जो किया है, जो समझा है। बहुत ही कंजूस व्यक्ति, इतने कंजूस व्यक्ति की उनकी जो जैकेट हुआ करती थी उनकी कोहनियों में थेगली लगे रहते थे और पैंट के जो घुटने हुआ करते थे, पैंट जहां घुटने पर पहुंचता है वहां भी बकायदे थेगलियां लगी होती थी। सोच करके देखिए, थिगलियां लगा लगा करके वो कोट और पैंट पहन रहे हैं। उस समय जो ब्लेड आया करता था दाढ़ी बनाने का, तो बकायदे उसके दोनों तरफ 1, 2, 3, 4 फिर दूसरी तरफ 5, 6, 7, 8 लिखते थे ताकि इस ब्लेड का वो भरपूर उपयोग कर सकें। एक तरफ 4 बार और दूसरी तरफ 4 बार वो ब्लेड को इस्तेमाल कर सकें। और दाढ़ी बनाने के बाद फिर उस ब्लेड को फेंकते नहीं थे, उस ब्लेड को रख लेते थे। फिर जो माचिस की तीलियां होती हैं उन तीलियों को इस ब्लेड से वो दो भागों में डिवाइड करते थे, बीचों बीच से काटते थे ताकि जब तीली जलाई जाए तो उसका आधा भाग अलग से काम आए और उसका आधा भाग फिर अलग से काम आए। आप क्या कहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? और अगर पूजा की थाली उनके सामने लाई गई तो उसमें जो चावल के कण होते हैं जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, उसके एक एक कण का इस्तेमाल होना चाहिए। कायदे चर्चा की गई है कि जब वे अपने नए मकान में गए और गृह प्रवेश जैसा कुछ होता है तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी इनके इस कंजूसी से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे, तो अंत में उन्होंने सारी व्यवस्थाएं इस तरह से की थी कि पूजा हो जाने के बाद थाली में चावल का एक भी कण न बचे। और कहा जाता है कि बाद में इस बात के लिए बकायदे उन्होंने पंडित जी की तारीफ की कि इस थाली में चावल का एक भी दाना वेस्ट नहीं हुआ। और पंडित जी को फिर बकायदे उन्होंने जो 11 रुपए की दक्षिणा दी वो क्रॉस्ड चेक से दी वो दक्षिणा, और उसमें भी क्रॉस कर दिया, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें जाकर के आप इस चेक को डालिए और फिर पैसे प्राप्त कीजिए। उन पंडित जी का कोई बैंक अकाउंट था नहीं, आप 1950 के आसपास को सोच करके देखिए। तो वो चेक उन्होंने रख लिया और आज तक उन्होंने वह चेक अपने पास रखा हुआ है, जिसे वो अपने जीवन की बहुत बड़ी धरोहर मानते हैं। ये जो मैं आपको छोटे छोटे इनके किस्से बता रहा हूं ना, ये बहुत ही केवल जिन किताबों में जिनका वर्णन है उन्हीं के बारे में मैंने बताया, और भी वर्णन है लेकिन उनके बारे में और बताने का कोई अर्थ नहीं है। मेरी समझ से इस व्यक्ति की जो कृपणता है, जो कंजूसी है, उसका एक अंदाजा तो आपको मिल ही गया होगा। वो बहुत बड़े पद पर भी जब थे तो कपड़े ऐसे ही पहनते रहते थे, उनके कमरे में 40 वाट का बल्ब जलता रहता था, मरियल सा पता भी नहीं लगता था कि इससे रोशनी भी हो रही है कि नहीं हो रही है। एक पंखा धीरे धीरे घूमता रहता था जिससे हवा नहीं आती थी, और वो महोदय बकायदे अपने पॉकेट से रुमाल निकाल निकाल करके अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहे होते थे। मतलब उन्हें लगता था कि यदि पंखे को बनवाया जाएगा तो इस पर खर्च होगा। वो खर्च भी करना उन्हें मंजूर नहीं था। दोस्तों, ये एक व्यक्ति की कृपणता है और कृपणता की महागाथा है। लेकिन ये महागाथा क्यों है, मैं इसे महा क्यों कह रहा हूं? क्या मैं आपके सामने सिर्फ एक कंजूस व्यक्ति की कंजूस की कहानियां बता रहा हूं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे, कैसे सोचा करते थे, किस तरह का जीवन जिया करते थे, और कभी कभी तो लगता है कि सच में क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो भी सकता है। दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर में अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक की स्थापना की थी, और उस विश्वविद्यालय का नाम है सागर विश्वविद्यालय। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति कंजूसी कर करके, अपने जीवन की इच्छाओं को काट काट करके, दफन कर करके जो उन्होंने पैसा बचाया, वो सब का सब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में लगा दिया, सागर विश्वविद्यालय। और यहां तक उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम मेरे नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए। बाद में फिर कुछ साल पहले फिर सरकार ने एक कानून पारित करके उसका नाम किया है हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा महसूस करके देखिए, सोच करके देखिए कि इन्होंने अपनी जो कृपणता की भावना थी, जो एक एक दमड़ी करके जिन्होंने बचाया था, इकट्ठा किया था, वो क्या स्वप्न देख रहे थे, किस बात के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे थे, कितने जबरदस्त किस्म के स्वप्न दृष्टा थे, और उस बचत को उन्होंने एक शिक्षा के इतने बड़े मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया। मतलब उनके जीवन की कृपणता किस तरीके से एक महान सार्थकता की पूर्ति का माध्यम बन गई, अपनी कंजूसी का किस तरीके से उन्होंने उदात्तीकरण कर दिया। और उन्हें उस किताब में बकायदे लिखा हुआ है कि एक बार जब उनके अपने विश्वविद्यालय की टीम इंटर यूनिवर्सिटी में चैंपियन हो गई, तब बकायदे कुछ स्टूडेंट उनके पास गए, वो उस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे। तो जब बकायदे स्टूडेंट गए और उन्होंने कहा कि सर हॉकी में हम चैंपियन हो गए हैं और कल आप छुट्टी की घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नो हॉलीडे, यहां तक कि मेरी मृत्यु के दिन भी छुट्टी नहीं होगी। और ऐसा ही किया गया। सोच करके देखिए दोस्तों कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए लोग थे, और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जो मिट्टी थी, जो है, वो तो इसी देश की थी। ऐसे लोग सचमुच में प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, और समझ में नहीं आते कि यार ये सब क्या है, कैसे है, लेकिन दोस्तों है। ऐसे व्यक्तित्व को मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से शत शत बार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल रामनवमी की छुट्टी है, आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परसों फिर मुलाकात होगी और तब किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।